ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, देश में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा की संभावनाओं और इसके विकास में आने वाली बाधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
तनेजा जी, जैसा कि हम सबको पता है कि ऊर्जा की कितनी जरूरत है हमें अपने विकास के लिए, और विकास के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं, उसकी उपलब्धता असीमित नहीं हो सकती, और ऐसे समय में जरूरत है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में पता करें, और जैसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसकी संभावनाओं को हम विकसित करें। और भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, और इस समय भारत सौर ऊर्जा की जो क्षमता है उसकी दृष्टि से दुनिया में चौथे स्थान पर है, और पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो हमारा जो पावर कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें काफी बड़ा विस्तार हुआ है। तो नरेंद्र तनेजा जी, आप इस बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे कि सौर ऊर्जा की किस तरह की संभावनाएं हमारे देश में मौजूद हैं और उनको हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं?
देखिए, अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं एक ग्लोब के ऊपर, तो बड़ा स्पष्ट सा दिखता है कि जो हमारा देश है पृथ्वी पे, वो एक ऐसा इलाका है जहां हमारे को सूरज की बड़ी कृपा है। मतलब जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वी आर वेरी ब्लेस्ड, कि जहां तक जो रोशनी की बात है या जिसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं, वो भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है, और साल के लगभग 10 महीने हमको ये उपलब्ध होता है। मॉनसून के महीने होते हैं जब गहने बादल आ जाते हैं, तब उस समय थोड़ा दिक्कत कई जगह हो जाती है, लेकिन अगर आप उन 2 महीनों को निकाल दें तो 10 महीने तो हमारे पास जो है बहुत सारा जो है सौर ऊर्जा हमारे पास होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां पे कि हम एक ऐसे देश हैं जिनको बहुत भारी मात्रा में हमको ऊर्जा आयात करनी पड़ती है, हम अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल आयात करते हैं, 54% प्राकृतिक गैस आयात करते हैं, हम काफी मात्रा में यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है उसको भी हम आयात करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कोयला भी हम आयात करते हैं। तो ऐसे में अब सरकार का ये नजरिया रहा है कि हमारी इतनी जो एक निर्भरता है आयात पे, उसको हमको कम करना चाहिए, और जहां तक संभव हो सके तो एक सरकार एक नजरिया लेके आई है कि 2047 तक, जब हम अपने देश की आजादी के 100 साल मना रहे होंगे, तब तक भारत ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी आजाद हो जाए, हमको आयात करने की आवश्यकता ना हो। तो उस दिशा में काफी तेजी से काम हो रहा है
जी। और जैसा कि भारत सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं बनाई हैं जिससे कि सौर ऊर्जा का विकास हो पाए और जिसमें सारे नागरिकों की भागीदारी जरूरी है, इसी तरह की एक योजना है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पॉलिसी हम कहते हैं, जो उत्पादन के प्रोत्साहन से जुड़ी हुई योजना है, और भारत सरकार ने इस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक 500 गीगावाइट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता का हम विस्तार कर पाएंगे। तो इस योजना के कुछ और जो उसके आयाम है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो आर्थिक विकास जिस तेजी से हो रहा है उसके लिए स्पष्ट है कि हम $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको उतनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और पर कैपिटा एनर्जी जो हमारे यहाँ कंजम्पशन है उसको भी सरकार का पूरा प्रयास है उसको बढ़ाया जाए। अब इसके लिए 3 मुख्य एरिया है जहां तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बात है। नंबर 1 जो है वो सौर ऊर्जा का है, जिसमें सरकार सब तरीके की स्कीम्स के अंतर्गत जो है उसको इंसेंटिवाइज कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, खासतौर से उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो और निवेश कर सकते हैं, और जिस तरह की उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता वो दी जा रही है। दूसरा जो है सबसे अहम है वो ये है कि अभी आज की तारीख में हमारी निर्भरता आयात पे काफी ज्यादा है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के जो पैनल्स और सेल और इक्विपमेंट जो प्रयोग में आते हैं वो काफी भारी मात्रा में हम आयात करते हैं। तो सरकार जो PLI का आपने जिक्र किया और जो सरकार ने और भी स्कीम्स उसके लिए लेके आई हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में है हमारी इक्विपमेंट को जो है और जो सोलर पावर पैनल हैं सेल हैं भारत में उनका निर्माण करें, जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके, और कहीं ना कहीं इरादा यह है कि वो आने वाले समय के अंदर आयात पर निर्भरता शून्य हो सके। तीसरा जो इसी स्कीम के अंतर्गत जो सरकार का प्लान है 2030 एजेंडा बहुत बड़ा एजेंडा है, उसमें यह है कि जो कोयले से जो हम बिजली का निर्माण आज करते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि नया जितना भी बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी बिजली निर्माण के जितने भी नए कारखाने लगते हैं वो अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी के हों, अर्थात उसमें भी 100 रूपये काफी जोर दिया जा रहा है। तो 2030 का जो टारगेट है उसी दिशा में काम हो रहा है। और अगर आप देखें पिछले 9 साल का खासतौर से रिकॉर्ड उठा करके, तो पिछले 9 साल के अंदर भारत ने जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसमें 30 टाइम्स उसमें बढ़ोतरी आई है, 30 टाइम्स, 20 गुना बढ़ा है, 20 गुना, जो अपने में दुनिया में एक रिकॉर्ड है। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसा देश होगा जिसमें इतने कम समय के अंदर इतनी तेजी। तो उसका नतीजा यह है कि आज लगभग 82 गीगावाट, 1 गीगावाट जो है वो 1000 मेगावाट का होता है, तो लगभग 81,000 मेगावाट जो जनरेशन पावर का भारत में हो रहा है वो आज हम सौर ऊर्जा से कर रहे हैं, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। और यही हाइड्रोजन को लेकर के है, जो क्या वो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको लेकर के मिशन में काम हो रहा है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है खासतौर से और जो विंड एनर्जी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। और 2030 एक माइलस्टोन है, एक ऐसा माइलस्टोन जिसमें सरकार की कोशिश है कि शायद उसको हम 1 साल पहले ही कर सकें।
जी तनेजा जी, एक और खास बात, जब हम सौर ऊर्जा या सौर उद्योगों की बात करते हैं तो 3 इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हमारे सामने आते हैं। एक तो जो आपने पहले ही जिक्र किया कि जो कॉस्ट है, जो लागत है इक्विपमेंट्स की, वो हमारे बीच में आती है। उसके बाद दूसरी जो मुख्य समस्या है कि वो स्टोरेज की है, तो और स्टोरेज और उसके बाद उसका जो हम आगे ट्रांसमिशन करते हैं उसके लिए जो ग्रिड की जरूरत पड़ती है, अगर हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विकसित कर रहे हैं और उसको आगे भेजना चाहते हैं, तो ये जो चुनौतियां हैं स्टोरेज की और उसके जो ट्रांसमिशन की, इसके बारे में भारत सरकार ने और आगे क्या योजनाएं बनाई हैं?
देखिए, पहला जो है वो एक चुनौती होती है, जब भी भारत जैसा देश जो इतना बड़ा है दुनिया की, आज जो है हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर आप पीपीपी पे जाते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी पे, तो हम आज दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था को जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो ऊर्जा की है, और ऊर्जा में भी खासतौर से ग्रीन एनर्जी की, क्योंकि हम बड़ी घनी आबादी वाले देश हैं, तो इसलिए जो हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एमिशन जो है वो कम से कम हो। और दूसरी तरफ ये भी है कि अभी आयात पर हमारी निर्भरता जो सोलर पावर इक्विपमेंट के लिए है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 80% जो है हम सोलर पावर इक्विपमेंट सेल्स ये अभी थोड़ा आयात कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी योजना बनाई है, उस योजना के अंतर्गत जो है ये है कि आने वाले 5 वर्ष के अंदर ही जो है भारत बड़ी मात्रा में अपनी जो निर्भरता आयात पे है उसको बहुत ही कम कर देगा। और उसके लिए 2 बड़ी-बड़ी गीगा फैक्ट्रियां तो गुजरात में ही लग रही हैं, और इसके अलावा 2 और गीगा फैक्ट्रीज की बातचीत हो रही है, शायद उसमें 1 कर्नाटक या दक्षिण भारत में कहीं हो। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस पर काम हो रहा है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है वो स्टोरेज की है। स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टोरी टेक्नोलॉजी है, अभी वो दुनिया भर के अंदर उसमें बहुत काम होना है। अर्थात ये हुआ कि आप जो उत्पादन करते हैं, जब सूरज बहुत चमक रहा है, आप उत्पादन जो उसका करते हैं, तो अगर आप उसको उस समय रियल टाइम में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा उसे स्टोर करना मुश्किल होता है। खासतौर से गर्मियों में, जो हमारे यहाँ मई या जून के महीने होते हैं, जबरदस्त गर्मी पड़ती है, उसके बाद मानसून आ जाता है। अगर स्टोरेज की समस्या हल हो जाए तो हम उसको फिर बड़ी आसानी से मानसून में यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी हम वहां नहीं है। भारत सरकार ने R&D के लिए काफी उसमें जो है निवेश करा हुआ है, दुनिया भर में इसमें बहुत काम हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ी बहुत सफलता मिली है, लेकिन अभी स्टोरेज जो है वो एक चुनौती है। और इसके साथ में जैसे आपने कहा कि जो अभी जो हमारा जो ट्रांसमिशन जो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आज देश में बिल्कुल हमारे देश में वर्ल्ड क्लास बन चुका है। नया राष्ट्रीय ग्रिड हमारा लगभग तैयार है, नॉर्थ साउथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, बल्कि कुछ अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कनेक्टेड है। तो अभी तो जितना उसका उत्पादन होता है, आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा का हो रहा है, वो सीधा उसमें जाता है। और जब डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, अर्थात जगह जगह जो छोटे गांव में जो प्लांट लगेंगे उनका होगा, उनको भी उस ग्रिड से कनेक्ट करने की बातचीत के अलावा योजना पे काम हो रहा है। लेकिन अभी स्टोरेज जो है ये एक चुनौती है वैज्ञानिकों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए, भारत भी उससे अलग।
जी तनेजा जी, जैसे आपने जिक्र किया जो ट्रांसमिशन का, ये जो ग्रिड की कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग है, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए, तो सोलर एनर्जी का भी हम उसी ग्रिड पे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए, या हमें अलग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी?
जब आप अपने घर या अपने ऑफिस या अपने फैक्ट्री के अंदर जब आप एक स्विच को ऑन करते हैं और आपके यहाँ जो प्रकाश आता है वो, ये आप कहना बड़ा मुश्किल होता है, वो प्रकाश आणविक है, न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है, सौर ऊर्जा से आ रहा है, पवन ऊर्जा से आ रहा है, या कोयले से आ रहा है, या वो डीजल से आ रहा है, अभी कहना बिल्कुल, क्योंकि एक बिजली का निर्माण तो बिजली का निर्माण है। उसके लिए ईंधन का किसका प्रयोग हो रहा है वो बात होती है, क्या ईंधन कोयला है, क्या ईंधन तेल है, क्या ईंधन प्राकृतिक गैस है, या वो हाइड्रोजन है, या वो सूरज है। सूरज जो है, जो हमारे देश में जैसे बहुत हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एक भट्टी की जरूरत होती है जिसको अंग्रेजी में रिएक्टर बोलते हैं, लेकिन प्रकृति का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर सूरज है। सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें जो प्रकृति ने बनाया, और जो उसी के रेडिएशन से सौर ऊर्जा का हम देश में निर्माण करते हैं, अपनी जमीन पर निर्माण करते हैं, उत्पादन उसका करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सौर ऊर्जा जो है, हमारी जो तमाम समस्याएं, तमाम जरूरतों का एक बहुत बड़ा हल है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा हल है, पवन ऊर्जा, खासतौर से समंदर के ऊपर पवन चक्की लगाना, बिजली के कारखाने लगाना ईस्ट कोस्ट पे और वेस्ट कोस्ट पे, वो बहुत बड़ा हुआ है, और न्यूक्लियर एनर्जी खासतौर से जो थोरियम से बनेगी वो हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि हमारे पास थोरियम के भी भारी भंडार है। तो मुझे लगता है ये जो सरकार का मंजिल है कि 2047 तक जो है भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देना, तो मुझे लगता है ईश्वर ने जो कुछ देने की आवश्यकता थी हमको दिया हुआ है। सरकार बड़ी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रही है, इंसेंटिव दे रही है, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कई राज्य भी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वजह नहीं कि 2047 से पहले ही शायद जो है वो भारत को हम एक ऊर्जा आजादी, जो एनर्जी इंडिपेंडेंस वो दे सके।
जी तनिया जी, एक सरकार की योजना है सोलर पार्क स्कीम, जो सौर पार्क योजना है, जिसके अंतर्गत 50 सोलर पार्क्स लगाने हैं 500 मेगावाट कैपेसिटी के। इससे किस किस तरह का जो जनरेशन में निश्चित रूप से फायदा होगा और एक माहौल बनेगा कि सौर ऊर्जा को विकास करना है और उसका यूज करना है, तो और क्या आप जानकारी देंगे इस योजना से किस तरह के फायदे जुड़े हुए हैं?
एक तो ये कि जो सोलर पार्क 50 की योजना है उस पर बहुत पे काम हो रहा है। आज जो है गुजरात के अंदर एक सोलर पार्क जो बनके तैयार है, इस पे काम हो रहा है, जो इतना विशाल है कि आप उसको स्पेस से देख सकते हैं, अंतरिक्ष यान में बैठ के उसको देख सकते हैं, इतना बड़ा है, और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। सरकार की योजना है कि 50 ऐसे सोलर पार्क बने, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि जब बड़े सोलर पार्क बनाने होते हैं तो भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसको बड़ी कंपनियां ही कर सकती है, लेकिन साथ साथ सरकार ने पिछले बजट में एक नई स्कीम को लॉन्च किया, उसमें यह है कि आपकी छत पे आपका बिजली घर, छोटा सा आपने का अपना पैनल होगा जिससे कि आप सौर ऊर्जा का निर्माण करेंगे, उस सौर ऊर्जा का आप अपना प्रयोग भी करेंगे, और अगर आपके पास सरप्लस होती है, मतलब ज्यादा हो जाती है, तो आप उसको ग्रिड में लगा करके बेच भी सकते हैं, तो आपकी आय भी होगी, आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा क्योंकि आप अपनी बिजली का खुद निर्माण कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी आय बढ़ेगी। तो अगर ये गांव के स्तर पर देखते हैं या कस्बा या शहर के स्तर पर देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है एक आय का साधन भी लोगों का बनता है, और साथ में ये है कि जो उनके बिजली के बिल है वो काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं।
एक चीज और तनेजा जी, जो भारत सरकार ने योजना बनाई है जैसे पीएम कुसुम योजना है, जहां पर कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया है और गांव में हम सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, तो उसमें जो कृषि के उपकरण है वहां पर हम सौर ऊर्जा की मदद से काम कर सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसका कुछ और विवरण आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
दरअसल ये देखा जाए तो सबसे दिलचस्प योजना ये है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है जहां ऊर्जा की दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है, और इस योजना के तहत ये है कि जो किसान है या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वहां पे लोग जो है वो बिजली का निर्माण सौर ऊर्जा का वहां पे करें, और जो इरिगेशन सिंचाई के लिए जो पंप की आवश्यकता होती है, या छोटे मोटे कारखाने जो थोड़े बहुत लगे रहते हैं गांव में लगे हुए हैं, उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है, या वहां पे जो स्कूल है वहां बिजली की आवश्यकता होती है, जो महिला केंद्र है उसमें आवश्यक, उसमें अपना बिजली का वो खुद निर्माण कर सके, और साथ साथ उसमें जहां नहर होती है, जहां नहर के ऊपर ही सोलर पैनल लग जाते हैं, जिसे नीचे जो है वो पानी जा रहा है और उसके ऊपर ऊपर बिजली का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरीके से जहां जैसे एक किसान का खेत है, मान लिया उसके पास 10 बीघा जमीन है या 2 बीघा जमीन है, नीचे वो खेती कर सकता है लेकिन एक हिस्से में ऊपर पैनल लगा करके बिजली का निर्माण भी कर सकता है, अपनी आवश्यकता के लिए भी, और अगर ज्यादा होता है तो बेचने के लिए भी। तो ऐसा कई जगह देश में हो रहा है, खासतौर से गुजरात ऐसा ऑलरेडी हो रहा है। तो ये योजना है कि पूरी योजना को देश भर के अंदर फैलाने की जरूरत है। एक बात मैं कहूंगा, जो आपने कहा ये जो आज पूरा सौर ऊर्जा की जो क्रांति है, सरकार तो नीतियां ला ही रही है, सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो नेतृत्व कर ही रही है, लेकिन आज ये एक आंदोलन बन चुका है, ऊपर के साथ टॉप से लेकर के नीचे से भी ये आंदोलन है। आज कहीं भी आप देश भर में जाते हैं, लोग खुद जानना चाहते हैं कि कैसे वो इस आंदोलन या इस क्रांति में हिस्सा ले सकते।
जी तनिजा जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, और हमें उम्मीद है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई हैं, जिस तरह से उन पर अमल कर रहे हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वो निश्चित रूप से समय के अंदर ही पूरे होंगे, और न सिर्फ हम अपने देश की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे देश में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा की संभावनाओं और इसके विकास में आने वाली बाधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।